नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। ज्यां बातिस्त फ्रेसो की पुस्तक मोर एंड मोर एंड मोर ऊर्जा, औद्योगिक विकास और जलवायु संकट के इतिहास पर लिखी गई एक विश्लेषणात्मक गैर कथा कृति है। इसका मुख्य उद्देश्य उस प्रचलित धारणा की जाँच करना है कि मानव समाज क्रमशः लकड़ी से कोयले, कोयले से तेल और फिर स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ता रहा है। फ्रेसो का तर्क है कि यह क्रमिक प्रतिस्थापन का इतिहास नहीं है। नई ऊर्जा प्रणालियों ने पुरानी प्रणालियों को समाप्त करने के बजाय अक्सर उनका विस्तार संभव किया। इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था को ऊर्जा संक्रमणों की श्रृंखला नहीं बल्कि ऊर्जा स्रोतों के बढ़ते संचय और पारस्परिक निर्भरता के रूप में समझना चाहिए। पुस्तक इतिहास, तकनीक, उत्पादन और भौतिक संसाधनों के संबंध को केंद्र में रखती है। यह जलवायु कार्रवाई के विरुद्ध तर्क नहीं देती बल्कि चेतावनी देती है कि अतीत के कथित संक्रमणों के आधार पर भविष्य की आसान अपेक्षाएं भ्रामक हो सकती हैं। इसका आग्रह है कि जीवाश्म ईंधनों से योजनाबद्ध दूरी बनाना मानव इतिहास में एक असाधारण, कठिन और सचेत राजनीतिक कार्य होगा। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले ऊर्जा संक्रमण की लोकप्रिय कहानी पर मूलभूत प्रश्न। पुस्तक का सबसे केंद्रीय हस्तक्षेप ऊर्जा संक्रमण की परिचित कहानी को चुनौती देना है। सामान्य वर्णन यह मानता है कि एक श्रेष्ठ ऊर्जा स्रोत आता है और पुराने स्रोत को पीछे छोड़ देता है, जैसे लकड़ी के बाद कोयला और कोयले के बाद तेल। फ्रेसो के अनुसार वैश्विक स्तर पर इतिहास इससे कहीं अधिक जटिल रहा है। नई ऊर्जा उपलब्ध होने पर कुल ऊर्जा खपत बढ़ी और पुराने ईंधन कई उद्योगों, क्षेत्रों तथा आपूर्ति श्रृंखलाओं में उपयोग होते रहे। इसीलिए केवल किसी देश के बिजली उत्पादन में बदलाव देखकर व्यापक ऊर्जा व्यवस्था के बदल जाने का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। ऊर्जा स्रोतों का हिस्सा घट सकता है पर उनकी कुल खपत फिर भी बढ़ सकती है यदि समूची अर्थव्यवस्था तेजी से फैल रही हो। यह अंतर जलवायु नीति के लिए महत्वपूर्ण है। यदि स्वच्छ ऊर्जा केवल अतिरिक्त मांग को पूरा करे जबकि कोयला, तेल और गैस का उपयोग पर्याप्त गति से न घटे तो उत्सर्जन संकट बना रहेगा। फ्रेसो का लक्ष्य परिवर्तन की संभावना को नकारना नहीं है। वह उस भाषा पर संदेह करता है जो बदलाव को लगभग स्वचालित, तकनीकी और ऐतिहासिक रूप से अपरिहार्य बताती है। पुस्तक पाठक को पूछने के लिए प्रेरित करती है कि किस ईंधन का वास्तविक अवसान हो रहा है, किस पैमाने पर हो रहा है और किस भौतिक व्यवस्था के सहारे हो रहा है। दूसरा, प्रतिस्थापन नहीं, ऊर्जा स्रोतों की भौतिक सहजीविता। फ्रेसो औद्योगिक इतिहास को सहजीविता के विचार से देखता है। इसका अर्थ है कि अलग अलग ऊर्जा स्रोत और सामग्री प्रणालियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। सक्राओलिसेफ एयरपोर्ट, कोयला आधारित खनन, परिवहन, धातु उत्पादन और औद्योगिक निर्माण के लिए लकड़ी, भूमि, श्रम और अनेक अन्य संसाधनों की जरूरत पड़ती थी। बाद में तेल आधारित अर्थव्यवस्था ने भी कोयले को पूरी तरह अप्रासंगिक नहीं बनाया क्योंकि इस्पात, सीमेंट, रसायन, बिजली और वैश्विक निर्माण नेटवर्क में कोयले की भूमिका बनी रही। इस दृष्टि से किसी ऊर्जा स्रोत को केवल इंजन, बिजली घर या वाहन के ईंधन तक सीमित करना भ्रामक है। उसके पीछे मशीनें, खदानें, बंदरगाह, सड़कें, भवन, उर्वरक, प्लास्टिक और विशाल आपूर्ति श्रृंखलाएं मौजूद होती हैं। पुस्तक का भौतिकवादी जोर यही है कि ऊर्जा व्यवस्था वस्तुओं की व्यवस्था भी है। उदाहरण के लिए, नई निम्न कार्बन तकनीकों का निर्माण भी खनन, धातुओं, औद्योगिक प्रसंस्करण और परिवहन पर निर्भर करता है। इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि ऐसी तकनीकें निरर्थक हैं, बल्कि निष्कर्ष यह है कि उनके पर्यावरणीय प्रभाव और जीवाश्म निर्भरता को पूरी जीवन श्रृंखला में मापना होगा। सहजीविता की अवधारणा सरल ईंधन तुलना के स्थान पर उत्पादन और अवसंरचना की पूरी व्यवस्था को देखने का आग्रह करती है। तीसरा, बढ़ती कुल खपत और दक्षता की सीमा। मोर एंड मोर एंड मोर का शीर्षक उस ऐतिहासिक पैटर्न की ओर संकेत करता है जिसमें तकनीकी दक्षता और नई ऊर्जा उपलब्धता के बावजूद कुल संसाधन उपयोग बढ़ता गया। फ्रेसो के विश्लेषण में समस्या केवल यह नहीं कि समाज ने गंदे ईंधनों का उपयोग किया, समस्या यह भी है कि औद्योगिक विस्तार ने ऊर्जा को अधिक उत्पादन, अधिक परिवहन, अधिक निर्माण और अधिक वस्तु उपभोग के साथ जोड़ा। इसलिए किसी मशीन, कारखाने या उपकरण की प्रति इकाई ऊर्जा खपत कम होने का अर्थ यह नहीं कि कुल खपत घटेगी। सस्ती या अधिक प्रभावी ऊर्जा सेवाएं उत्पादन और उपयोग के दायरे को बढ़ा सकती हैं। जलवायु बहस में यह बिंदु विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि दक्षता को अक्सर पर्याप्त समाधान की तरह प्रस्तुत किया जाता है। दक्षता आवश्यक हो सकती है लेकिन वह मांग की सीमा, उत्पादन की दिशा और जीवाश्म आपूर्ति पर नियंत्रण का विकल्प नहीं है। पुस्तक इस बात पर भी ध्यान दिलाती है कि ऊर्जा की चर्चा को केवल बिजली तक सीमित नहीं रखना चाहिए। भारी उद्योग, निर्माण सामग्री, माल ढुलाई और रोजमर्रा की वस्तुओं के उत्पादन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऊर्जा की बड़ी भूमिका है। इस प्रकार पुस्तक ऊर्जा संकट को उपभोग के नैतिक उपदेश के रूप में नहीं बल्कि आर्थिक विस्तार की संरचना के प्रश्न के रूप में रखती है। चौथा, ऊर्जा संक्रमण की भाषा और टालमटोल की राजनीति। फ्रेसो की पुस्तक में ऊर्जा संक्रमण केवल एक तकनीकी शब्द नहीं बल्कि राजनीतिक भाषा का विषय भी है। वह दिखाता है कि संक्रमण का विचार लंबे समय से ऐसी आशावादी समय रेखा बना सकता है जिसमें वर्तमान में कठोर निर्णय लेने की जरूरत कम दिखाई दे। जब यह मान लिया जाता है कि बाजार, नवाचार और अगली तकनीक स्वाभाविक रूप से पुराने ईंधनों को हटा देंगे, तब जीवाश्म ईंधन उत्पादन घटाने, अवसंरचना बदलने और संसाधन मांग नियंत्रित करने जैसे विवादास्पद कदम टल सकते हैं। पुस्तक के अनुसार ऊर्जा कंपनियों और औद्योगिक हितों ने भी संक्रमण की भाषा का उपयोग ऐसे भविष्य के संकेत के रूप में किया है जो तत्काल परिवर्तन का बाध्यकारी कार्यक्रम नहीं बनता। यह आलोचना हर स्वच्छ ऊर्जा निवेश पर संदेह करने के लिए नहीं कहती। इसका केंद्र प्रश्न जवाबदेही है। किसी घोषणा को उसके वास्तविक परिणामों से जांचना चाहिए, जैसे जीवाश्म ईंधन की निकासी, नई पाइपलाइन और संयंत्र, सार्वजनिक निवेश, उद्योगों की मांग तथा उत्सर्जन में वास्तविक कमी। इस दृष्टि से संक्रमण एक आकर्षक कथा नहीं बल्कि ठोस संस्थागत निर्णयों का समूह है। पुस्तक की उपयोगिता यहाँ है कि वह पाठक को वादों और भौतिक परिणामों के बीच अंतर करने का ढांचा देती है। जलवायु नीति में लक्ष्य तभी विश्वसनीय होंगे जब वे अतिरिक्त स्वच्छ क्षमता के साथ जीवाश्म निर्भरता को समाप्त करने के स्पष्ट उपाय भी दिखाएं। अंत में अभूतपूर्व कार्य के रूप में जीवाश्म ईंधन से योजनाबद्ध निकास पुस्तक का निष्कर्ष निराशावादी निष्क्रियता नहीं बल्कि ऐतिहासिक ईमानदारी की मांग है। फ्रेसो के अनुसार अतीत में समाजों ने प्रायः ऊर्जा के नए स्रोत जोड़े हैं, उन्हें जानबूझकर और तेज गति से दबाया नहीं है। आज की जलवायु चुनौती अलग है क्योंकि लक्ष्य केवल नई स्वच्छ क्षमता लगाना नहीं बल्कि आधुनिक जीवन की प्रमुख ऊर्जा और सामग्री प्रणालियों में जीवाश्म ईंधनों की भूमिका को घटाना है। यह कार्य बिजली क्षेत्र से आगे जाता है। इसमें उद्योग, भवन, परिवहन, कृषि, व्यापार और सार्वजनिक अवसंरचना की परस्पर जुड़ी व्यवस्थाएं शामिल हैं। इसलिए इतिहास से यह आरामदेह सबक नहीं लिया जा सकता कि बाजार अपने आप पुराने ईंधनों को हटा देगा। पुस्तक यह स्पष्ट करती है कि आवश्यक परिवर्तन की कठिनाई को स्वीकारना उसके विरुद्ध तर्क नहीं है, उल्टे कठिनाई को कम करके आंकना कमजोर नीतियों और विलंब का कारण बन सकता है। व्यावहारिक स्तर पर यह दृष्टि नीति निर्माताओं को दोहरी कसौटी अपनाने को कहती है। एक ओर स्वच्छ ऊर्जा, दक्षता और विद्युतीकरण का विस्तार हो, दूसरी ओर जीवाश्म ईंधनों की आपूर्ति, मांग और नई दीर्घकालिक अवसंरचना पर प्रत्यक्ष नियंत्रण हो। पुस्तक का विशिष्ट योगदान यह है कि वह जलवायु लक्ष्य को तकनीकी प्रतिस्थापन के बजाय सामाजिक, औद्योगिक और राजनीतिक पुनर्गठन के प्रश्न में बदल देती है। निष्कर्ष में मोर एंड मोर एंड मोर उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा नीति, औद्योगिक इतिहास, अर्थव्यवस्था या पर्यावरणीय राजनीति को सतही आशावाद से आगे समझना चाहते हैं। यह पुस्तक उन नीति निर्माताओं, पत्रकारों, विद्यार्थियों और नागरिकों के लिए भी प्रासंगिक है जो स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार को महत्वपूर्ण मानते हुए यह जानना चाहते हैं कि वह अकेले पर्याप्त क्यों नहीं हो सकता। इसका बौद्धिक लाभ एक स्पष्ट विश्लेषणात्मक आदत है। ऊर्जा से जुड़ी हर घोषणा को कुल खपत, सामग्री उपयोग, आपूर्ति श्रृंखला और जीवाश्म ईंधन में वास्तविक कमी की कसौटी पर परखना। पाठक यह भी समझ सकता है कि दक्षता, विद्युतीकरण और नवीकरणीय ऊर्जा को व्यापक मांग प्रबंधन तथा औद्योगिक नीति से अलग करके नहीं देखा जा सकता। समान विषय की अनेक पुस्तकों में समाधान प्रायः नई तकनीक, बेहतर बाजार संकेतों या एक सीधी संक्रमण कथा में खोजा जाता है। फ्रेसो की कृति अलग इसलिए है कि वह पहले उस ऐतिहासिक ढांचे को ही चुनौती देती है जिस पर ये उम्मीदें आधारित हैं। वह न तो जलवायु संकट की तात्कालिकता घटाती है न परिवर्तन को असंभव बताती है। इसके बजाय वह कहती है कि वास्तविक बदलाव को स्वचालित ऐतिहासिक प्रवृत्ति मानना भूल होगी। यही असहज पर उपयोगी बात पुस्तक को ऊर्जा इतिहास और जलवायु बहस में अलग स्थान देती है। यह आसान भविष्यवाणियां नहीं देती पर समस्या के भौतिक पैमाने को अधिक सटीक रूप से देखने में मदद करती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जान बैप्टिस्ट फ्रेसोस, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।